ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल के परिसर में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर पशु क्रूरता और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए परामर्श जारी किया। दिल्ली विधानसभा ने 8वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज निगम सचिवालय में नामांकन दाखिल किए गए। दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। और गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल के परिसर में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गर्मी के दिनों में किसी को भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा पूरे शहर में विशेषकर स्कूल परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर हजारों वाटर एटीएम लगाए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस वाटर एटीएम के माध्यम से स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ सड़क से गुजरने वाले आम नागरिक भी स्वच्छ और ठंडे जल का लाभ ले सकेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 10वीं कक्षा के 1200 टॉपर्स को लैपटॉप उपहार स्वरूप भेंट किए गए। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर पशु क्रूरता और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए एक परामर्श जारी किया है। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा जारी इस परामर्श में गाय, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
इस परामर्श के अनुसार बकरीद के अवसर पर कुर्बानी केवल सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर दी जा सकती है। सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गली, पार्कों या किसी खुले स्थान पर कुर्बानी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कुर्बानी की रस्मों के फोटो या वीडियो लेने और सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हमने ये एडवाइजरी इश्यू की है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। अगर कोई भी इस प्रकार की कुर्बानी की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने सचिव सह आयुक्त, डीएम, डीसीपी, आयुक्त एमसीडी और अन्य संबंधित अधिकारियों को बकरीद के दौरान पशु कल्याण कानूनों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों द्वारा अभिभावकों और विद्यार्थियों को डराने के लिए बाउंसरों को नियुक्त करने की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है बल्कि एक अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों को सीखने, मूल्यों और राष्ट्र निर्माण का स्थान बने रहना चाहिए। दिल्ली विधानसभा ने 8वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसे उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता की सराहना की। इस रिपोर्ट कार्ड में कागज रहित प्रणाली, 500 किलोवाट सौर संयंत्र और डिजिटल ज्ञान केंद्र जैसी पहलों को रेखांकित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों, युवाओं की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के संवाद का भी उल्लेख है। अध्यक्ष गुप्ता ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और जन केंद्रित विधायी कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन न केवल 100 दिन की उपलब्धियों का उत्सव है बल्कि विरासत से विकास की ओर बढ़ते दिल्ली विधानसभा के नए युग की शुरुआत भी है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 71 विदेशी नागरिकों को पिछले महीने हिरासत में लिया। इनमें 47 बांग्लादेश के, 17 म्यांमार के और 7 नाइजीरिया के नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि इन सभी को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है और सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज निगम सचिवालय में नामांकन दाखिल किए गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए सत्या शर्मा और आम आदमी पार्टी की ओर से इस पद के लिए प्रवीण कुमार ने नामांकन दाखिल किया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से सुंदर सिंह और आम आदमी पार्टी की ओर से मोहिनी जीनवाल ने पर्चा भरा है। ये चुनाव 12 जून को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहवर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर दिया। पटियाला हाउस अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से राणा के स्वास्थ्य के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उसके वकील ने अभियुक्त के बिगड़ते स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था। इससे पहले एनआईए ने पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक राणा की आवाज और लिखाई के नमूने अदालत में पेश किए थे ताकि 26/11 के सह अभियुक्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ टेलीफोन पर हुई उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने आज दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में 100 नई इलेक्ट्रिक इंटरस्टेट बसें शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये बसें दिल्ली को पड़ोसी राज्यों और धार्मिक स्थलों से जोड़ेंगी। श्री सिंह ने इसे सतत परिवहन और ग्रीन दिल्ली की दिशा में अहम कदम बताया। बैठक में डीटीसी की आय बढ़ाने के लिए विज्ञापनों के जरिए नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की योजना भी पेश की गई, जिससे सालाना 5 करोड़ रूपये की आमदनी संभावित है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। यह पोर्टल इन संपत्तियों की दक्षता भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण का परिचायक है।
आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक नीति में आज रेपो रेट में उम्मीद से अधिक 50 अंकों की कटौती कर 5.5% कर दिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने फरवरी और अप्रैल में भी 25 अंकों की कटौती की थी और ऐसी संभावना थी कि इस बार भी रिजर्व बैंक 25 अंकों की ही कटौती करेगा। वर्ष 2025 में रेपो रेट में अब तक कुल 1% की कटौती हो चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती से वैश्विक अनिश्चितता के परिदृश्य में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने बाजार में मौद्रिक तरलता को मजबूती देने के लिए नकद आरक्षी अनुपात CRR में भी 1% की कटौती की है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने 3 जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरुआत में बोर्ड द्वारा मांगे गए समय पर सवाल उठाया था, लेकिन बाद में पीठ ने कहा कि बोर्ड द्वारा बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट PG 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि यह अनुभाग प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराने में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया से ही क्षमता का पूरा इस्तेमाल संभव है। उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय भाषाओं को सुदृढ़ बनाकर ही भारत गौरवशाली स्थिति प्राप्त कर सकता है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय भाषा अनुभाग देश की भाषाई विविधता को समाहित करते हुए सभी भाषाओं के लिए एक सुदृढ़ और संगठित मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते समय सभी भाषाओं की समृद्धि और संवेदनशीलता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस अवसर पर गृह सचिव और सचिव राजभाषा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आज कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास तथा असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में देश स्टार्टअप्स, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं का साक्षी बना है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को परिवर्तनकारी बताया है। श्री गोयल ने एक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई की अनुमति है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें निवेशकों ने भारत के विकसित निवेश पारिस्थितिकी तंत्र, भविष्य की विस्तार योजनाओं और आय के पुनर्निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वैद्य जयंत यशवंत देव पुजारी की नियुक्ति रद्द कर दी और उन्हें इस पद के लिए अयोग्य पाया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने श्री देव पुजारी की नियुक्ति को अमान्य और रद्द करने संबंधी रिट याचिकाओं तथा अधिकार परीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि श्री देव पुजारी के पास पीएचडी की डिग्री है, जबकि इस पद के लिए अपेक्षित योग्यता एमजी या भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी भी विषय में कोई अन्य समकक्ष मास्टर डिग्री है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का माउंट एवरेस्ट अभियान दल 18 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सफल अभियान के बाद लौट आया है। कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय में दल के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दल में गए कैडेट्स की औसत आयु 19 वर्ष थी। इन्होंने खराब मौसम और कठिन चढ़ाई के बावजूद अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनसीसी कैडेट कृतिका शर्मा ने बताया कि पिछले 2 वर्ष के दौरान उनका दल कठोर प्रशिक्षण से गुजरा और ने शानदार सफलता हासिल की। एनसीसी कैडेट मोहित कंथिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अभिलाषा ने उनके संकल्प को बल दिया।
और बहुत बार सर दिमाग में आया कि गिव अप करते हैं, पर नहीं, हौसला इतना बुलंद था कि सर अपना एनसीसी फ्लैग टॉप पे ले रहना है और ले रहा है।
हमें लाइफ लर्निंग लेसन भी मिले, अगर कोई भी चैलेंज आए तो कभी भी गिव अप नहीं करना, अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा थोड़ा करके पुश करते हो, एक ना एक दिन तुम्हें अपना गोल मिल ही जाएगा। हेल्थ का अपना ख्याल रखो।
इस अभियान दल को 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल के परिसर में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर पशु क्रूरता और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए परामर्श जारी किया। दिल्ली विधानसभा ने 8वीं विधानसभा के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज निगम सचिवालय में नामांकन दाखिल किए गए। दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहवर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।